नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम बीबीसी इंडिया बोल में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम का विषय आप जान ही चुके हैं, हमारी टेलीफोन लाइन खुल चुकी है, नंबर एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देता हूं, 1811-7000 और 1811-7001। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में प्रोफेसर हैं, और मेरे साथ तमाम श्रोता भी इस टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विषय की बात करते हैं कि सीमा विवाद के चलते पिछले 4 हफ्ते से भारत और चीन के बीच में तनाव की स्थिति है। दोनों देशों के बीच 3,500 किलोमीटर की लंबी सीमा है। दोनों देश 1962 का युद्ध झेल चुके हैं, आमने सामने लड़ चुके हैं, लेकिन सीमा पर तनाव आज भी है और कभी कभी तनाव की वजह यही चलता है। हाल का मामला तब शुरू हुआ जब भारत ने डोकलाम में चीन के सड़क बनाने की कोशिश का विरोध किया। भारत में डोकलाम के नाम से जाने जो इलाका है उसको चीन में डोंग लोंग के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, सबसे पहला तो सवाल यही है कि ये जो 62 के बाद इस स्थिति को सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति कहेंगे?
ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि पहले कई बार इस तरह के तनाव सीमा पर हुए हैं, पर वो द्विपक्षीय, भारत और चीन में थे। इस बार आप देखें कि एक तीसरा देश भूटान उसमें शामिल है। मैं तो कहूँगा कि ये खासकर मामला देखा जाए कि चीन और भूटान में है। भूटान की संप्रभुता का जो है एक तरह से इनवैलिडेशन हो रहा है चीन की तरफ से, और भारत क्योंकि हमेशा
भाई मैं जानना चाहता था, हमारे श्रोताओं के लिए ये ज़रूरी है जानना कि भाई भारत और मतलब मामला अगर भूटान और चीन का है तो भारत कहाँ से आ गया?
क्योंकि शुरू से ही आप देखें कि ब्रिटेन जब भारत में रूल कर रहा था तो ब्रिटिश इंडिया का ये प्रोटेक्टोरेट रहा था, और जब भारत आज़ाद हुआ तो रिश्ते कुछ उस तरह से ही कंटिन्यू रहे, और एक फ्रेंडशिप ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए दोनों तरफ से 1949 में, जिसमें जाहिर है कि साफ तौर पे लिखा गया कि रक्षा और विदेश नीति के नज़रिए से जो भूटान है वो भारत को सलाहकार की तरह एक मानेगा और उसकी सलाह से चलेगा, और इसके अलावा हमारे खास बहुत सुरक्षा के संबंध हैं आपस में, जिसमें एक भारत का ट्रेनिंग यूनिट एक ब्रिगेड भूटान में रहता है, और उसके अलावा और भी कई तरह की जिम्मेदारियां वहाँ निभाता है जब जब भूटान सरकार उनको कहती है इस तरह की बात। तो जैसे कि अब माना गया कि इस बार जब चीनी सैनिक डोकला में आए तो भारत उसको डोकला और भूटान उसको डोकलाम और चीन उसको तुंगलाम कहता है। उस क्षेत्र में जब चीनी सैनिक आए और ऐसा माना जाता है कि भूटानी सैनिक उनको नहीं रोक पाए तो उन्होंने भारत की सहायता मांगी और भारत ने
तो उस मामला जो द्विपक्षीय मामला वो त्रिपक्षीय मामला हो गया।
त्रिपक्षीय मामला
और इस तरह से भूटान और चीन के बीच का जो ये मामला था उसमें भारत भी शामिल हो गया। कार्यक्रम एक श्रोता को शामिल कर रहे हैं, और पंजाब से ये श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
जी मैं गुरप्रीत सिंह बात कर रहा हूं, पंजाब से।
जी गुरप्रीत जी,
सर देखिए, अभी स्वर्ण सिंह जी ने, प्रोफेसर साहब ने बताया कि भूटान को थ्रेट किया गया है चाइना की तरफ से, ठीक है। तो क्या भूटान यूएनएससी या इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता था? और दूसरी बात यह है कि हमें थोड़ा चाइना से संभल करके रहना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो हम उनका सारा सामान और साजो सामान ही उनका यूज कर रहे हैं, हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, एक तरह से हम उनकी बैकबोन है, उनके प्रोडक्ट व्यापार की धुरी है। तो एक तरफ तो हम या तो भारत अपने अंदर देशभक्ति को का जज्बा अपने नागरिकों में यू नो उसको कहते हैं कि इम्पोज करने में फेल रहा है, ठीक है। तो क्या इससे स्वर्ण सिंह जी एग्री करते हैं जो मैं कह रहा हूँ?
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पर मैं एक श्रोता को और शामिल कर लेता हूँ, उसके बाद इन दोनों बातों पर बात करेंगे। जी
हेलो।
जी हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं?
हेलो।
जी हाँ जी हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, कहाँ से बोल रहे हैं?
हाँ जी, मैं उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा से नौगावा थाना से बात कर रहा हूँ।
अमरोहा से? जी हाँ जी, अमरोहा से आप बोल रहे हैं जी।
मैं सर इतना ही कहना चाहता हूँ इंडिया और अपना चीन के बारे में कि चाइना और पाकिस्तान की पॉलिसी एक है बिल्कुल, और इससे ना ही इसे डराए और ना ही इससे डरे, और अपना काम बराबर करते रहे। लेकिन मोदी जी को कुछ ना कुछ इसके बारे में बोलना चाहिए। और सही जवाब देना चाहिए, बिल्कुल सटीक आंसर देना चाहिए इन लोगों को। ना ही इन्हें डराने की जरूरत है, ना ही डरने की जरूरत है, ये सिर्फ हमें डराता रहता है और करेगा कुछ नहीं। ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये हम जानते हैं। ये वैसे डराता ही रहता है, ईदल भक्की देता रहता है पूरी दुनिया, लेकिन दुनिया इसके अगेंस्ट हो चुकी है। इसका वक्त बहुत करीब है और हमारा टाइम बहुत अच्छा है, हमारा फ्यूचर ब्राइट है। इसका फ्यूचर ब्राइट नहीं है चाइना
जी,
का
जी। बहुत 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 शुक्रिया। तो दो श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। पहले श्रोता जो गुरप्रीत सिंह थे, उन्होंने ये कहा कि क्या ये मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत में नहीं ले जा सकता था भूटान? और दूसरी चीज़, तो पहले तो इसी की बात कर लेते कि क्या ये मामला वाकई भूटान नहीं ले जा सकता था, या बहुत छोटा देश है, उसके पास समर्थन नहीं है, क्या इस तरह का तो कुछ नहीं?
नहीं, बिल्कुल ले जा सकता है, पर मामला यदि आपस में सुलझा लिया जाए तो शायद बेहतर होगा, और मामला शायद इतना बढ़ा नहीं आगे तक कि उसको इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में ले जाया जाए। यदि मामला नहीं सुलझता है और मान लीजिए कि किस तरह का वायलेंस दोनों तरफ से शुरू होता है, जब कोई और खतरा खड़ा होता है, तो जाहिर है कि वो सॉवरन स्टेट है,
संप्रभु राष्ट्र के अपने अधिकार होते हैं,
अपने अधिकार हैं, और वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बात कर सकता है। पर इस वक्त मुझे लगता है कि मामला जिस तरह से है उसको आपस में सुलझाने में शायद ज़्यादा आसान होगा।
आपस में सुलझाना आसान होगा, एक उपाय बता रहे हैं गुरप्रीत सिंह। और एक उपाय इसी तरह का एक शिवशंकर शर्मा है, जिन्होंने कि बीबीसी हिंदी के फेसबुक पेज पर टिप्पणी की है। उनकी बात और इनकी बात एक ही जैसी है कि चीन का भारत में $50 अरब से ज़्यादा का व्यापार है, उसका बहिष्कार कर दीजिए, चीन अपने आप संभल जाएगा। और जो गुरप्रीत कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इतना सामान हिंदुस्तान खरीदता है, तो अगर आप इस व्यापार को राष्ट्रभक्ति से उन्होंने जोड़ दिया, तो अगर एक तरह से अगर आप इस पे कटौती करना शुरू कर दें तो चीन को पता चल जाएगा कि भारत क्या चीज़ है।
मुझे लगता है कि वो शायद थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा कड़ा कदम होगा कि बिल्कुल हम व्यापारी रिश्ते बंद कर दें चीन के साथ। और कई तरीके हैं उसको ये बात समझाने के कि उसने जो किया है वो ठीक नहीं है, और उसकी कूटनीतिक तरीके से शायद उसको सुलझाना ज़्यादा अच्छा होगा। व्यापार बंद तब होता है जब आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं आपस में। और मुझे लगता है कि हाल ही में जो G20 की मीटिंग हुई हैम्बर्ग में, वहाँ दोनों नेताओं की आपस में हल्की फुल्की बातचीत हुई, और दोनों का जो एक तरह से बॉडी लैंग्वेज था उससे नहीं लगा कि बिल्कुल सुलझने के कोई चांस आसार ही नहीं है इसमें। तो वो व्यापार बंद करना एक शायद बहुत कड़ा कदम होता है, और उसको एक अलग स्टेज पर इस्तेमाल किया जाता है। वो इस्तेमाल हो सकता है, खासकर इसलिए कि आप देखें कि चीन की तरफ से निर्यात भारत को बहुत ज़्यादा है, और भारत का जो निर्यात चीन को जाता है वो केवल 15-20% है पूरे व्यापार में। तो इसलिए जाहिर है कि हम यदि ऐसा कदम भविष्य में कभी उठाएं तो चीन पर ज़्यादा असर होगा बजाय के भारत पर। पर इस वक्त मुझे लगता है इतना कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है।
जो चीन का सरकारी मीडिया है, उसने अभी कुछ दिनों पहले एक लेख छापा, ग्लोबल टाइम्स जो सरकारी मीडिया, उसने कहा कि भारत में इस तरह की बातें तमाम मौक़ों पर सुनाई देती हैं जब आप चीनी सामान के बहिष्कार की बात करते हैं। और पिछली बार जब भारत में पर्व होते हैं, तो पिछली बार कुछ समय पहले की बात है कि इस तरह की कई अफवाहें आईं कि चीनी सामान का बहिष्कार करो, और उस पर भी प्रतिक्रिया आई। भारत सरकार ने कहा कि नहीं, हमने अपनी ओर से ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये जो दूसरे श्रोता थे, ये कह रहे थे कि मोदी जी को कुछ करना चाहिए, मोदी जी क्या करेंगे?
मोदी जी को जो करना है वो जाहिर है कि वो कर रहे हैं। हर बात पर प्रधानमंत्री खुद टिप्पणी करें ये ज़रूरी नहीं होता, वो कई अलग अलग स्तर पर इस बात का सुलझा,
पैरेलल जिसको कहते हैं कि कूटनीति चलती रहे।
बिल्कुल, आपने वहाँ के एक अखबार का जिक्र किया ग्लोबल टाइम्स का, तो वो ये पहली बार नहीं, वो अक्सर इस तरह की बहुत ही कटु शब्दों में भारत की बात करता है, जो हम कई बार हमें बहुत ख़राब लगता है। पर वो एक अखबार है, पार्टी का अखबार है, वो चीन को रिप्रेजेंट करता है। भारत में भी शायद कुछ ऐसी आवाज़ें आप ढूंढ सकते हैं। तो हमें पूरा रवैया चीन की नेताओं का हमारी तरफ क्या है, उनके समाज का हमारी तरफ रवैया क्या है। अब देखें कि हाल ही में हमारे आमिर खान की एक फिल्म थी
दंगल,
वो चीन में इतनी पॉपुलर हुई है कि आप मान नहीं सकते, हर किसी की ज़ुबान पर उस फिल्म का नाम है। तो एक समाज का अलग रवैया है, राजनेताओं का अलग रवैया है, मीडिया का अलग रवैया है, तो सारी,
और जो बिजनेस कम्युनिटी हिंदुस्तान में काम कर रही है उसका बहुत बड़ा व्यापार वो चाइना से होता है।
बिल्कुल, और उनका यहाँ रुझान बहुत ज़्यादा है। मैं तो ये मानता हूँ कि धीरे धीरे भविष्य में आप देखेंगे कि जो रिश्ते हैं वो राज्य से हटकर समाजों के रिश्ते बनने वाले हैं, व्यापारियों के रिश्ते बनने वाले हैं, इंटेलेक्चुअल्स के रिश्ते और मीडिया के रिश्ते बनने वाले हैं।
हाल ही में जबकि ये तनाव चल रहा है, हाल ही में खबर आई कि गुजरात ने चीन से कुछ व्यापारिक समझौते किए।
वही नहीं, आप देखें, आपके तीन सीनियर भारत के मंत्री
प्रकाश जावड़ेकर भी उनमें से एक थे,
वो वहां ब्रिक्स की मीटिंग में, एजुकेशन मिनिस्टर की मीटिंग में वहां गए और उनकी तस्वीरों में बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, ऐसा लगता नहीं कि कोई तनाव है।
मतलब कुल मिलाकर क्या ये कह सकते हैं कि दो चेहरे दिखते हैं, कूटनीति अपनी तरफ, व्यापार अपनी तरफ, और बीच का कुछ रास्ता निकलता हो तो निकल जाए।
तो ये कहना होगा कि चीन और भारत के रिश्तों में सब तरह के रंग शामिल हैं। और आज किस रंग की बढ़त है और किसकी कमी है, ये नापना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है।
एक श्रोता है श्रीकांत, हम कार्यक्रम में आपको शामिल कर चुके हैं। श्रीकांत, अपनी बात रखिए।
नमस्कार जी।
नमस्कार।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, वीजा की बात नहीं करते, चाइना जाते हैं, बॉर्डर की बात नहीं करते, इंग्लैंड जाते हैं तो माल्या की बात नहीं करते हैं। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो सिर्फ जो है जो लोग विदेशों में छूट गए हैं उनको लाने का काम करते हैं, जो कि वहाँ के डी ग्रेड के फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है। तो ये काम फॉरेन मिनिस्ट्री को दिया जाए तो काफी अच्छा से होगा। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से चाइना के बॉर्डर के जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे मिल करके एक हो जाए और चाइना को सबक सिखाए तो शायद कोई काम बन सकता है। वैसे मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, हमारे बेंगलोर में पिछले 12 दिन से चाइना का कोई भी सामान नहीं आ रहा है, बायकॉट चाइना।
जी श्रीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस तरह की जो विचार है ये एकदम सीधे कट टू कट विचार है कि इन्होंने कहा कि भाई 12 दिन से हम सामान नहीं खरीद रहे। दूसरा जो मुद्दा, बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई ये काम तो विदेश मंत्रालय को करना चाहिए, विदेश मंत्री को करना चाहिए। मोदी जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं पूरे विश्व के भ्रमण पे होते हैं लेकिन मुद्दे की बात नहीं करते, ऐसा इनका कहना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस दरमियान बातें नहीं होती होंगी?
एक तो पहले ये देखें,
और ज़रूरी नहीं है, कूटनीति किस चीज़ की है? कूटनीति तो यही है।
पहले तो पूरे विश्व में कूटनीति का रुझान जो है वो जिसको हम सबमिट मीटिंग्स कहते हैं, कि जो आपके बड़े नेता हैं वो अक्सर आसानी से बार बार मिलते हैं। इसलिए केवल भारत की बात नहीं, पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है कि जो दूसरे मंत्री हैं, जो मंत्रालय हैं, वो उनका काम केवल उनको इम्प्लीमेंट करना रह गया है, कि जो निर्णय बड़े नेता इन मल्टीलेटरल मीटिंग्स में लेते हैं उनको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाए। तो ये केवल भारत के साथ नहीं हो रहा, पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है। और ख़ासकर ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जो हैं वो शायद फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं और खूब यात्रा करते हैं, तो ये शायद पहले ऐसा नहीं होता था भारत के लिए। से
ये भी थोड़ा ट्रेंड चेंज,
ये कह सकते हैं कि नई चीज़ है हमारे लिए। पर देखिए, वो एक पार्टी का सरकार होता है, उसमें कौन क्या रोल अदा करेगा वो खुद तय करते हैं। और ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड्स में ऐसा माहौल है कि आपके जो बड़े नेता हैं वो बार बार बड़े सम्मेलनों में जाएंगे, बात करेंगे, और उनकी छवि जो है पूरे देश की उस तरह से आपकी उभरेगी। अब उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने शायद वीज़ा की बात अमेरिका में नहीं कही। आप देखें कि जब प्रधानमंत्री जाते हैं किसी भी देश में तो उनके बहुत सारे सलाहकार उनके साथ उनको समझाते हैं कि कौन सी बात से भारत को फ़ायदा होने वाला है। तो मतलब ये होता है कि आप जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, जिनकी छवि बहुत ही असमंजस में डालती है लोगों को, वो क्या कहेंगे, अगला ट्वीट क्या करेंगे। पिछले 5 बड़े नेताओं से वो मिले हैं जनवरी से लेकर, और लगता है पूरे विश्व को कि केवल ये जो प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई उसमें कुछ भी अटपटा नहीं हुआ और सारी मीटिंग ठीक रही। और उससे भी बड़ी बात ये कि उनकी हमेशा कोशिश रही कि जो प्रेसिडेंट ओबामा थे उनकी सभी नीतियों को हटाया जाए। तो ये पहली ऐसी बड़ी मुलाकात थी जिनमें लगा कि ओबामा की भारत के प्रति जो नीतियाँ थी वो कंटिन्यू रहेंगी। तो उसको पूरे तौर पे देखें तो एक सफलतापूर्ण वो लगता है कि जो यात्रा हुई
उसमें जाहिर है कि विवादित मुद्दे होते हैं जिनको ध्यान साइडलाइन कर दिया जाता है।
बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ ऐसी बात हम ना ज्यादा पुश करें जिससे पूरा जो ओवरऑल पिक्चर है उसमें
रस्सी इतनी मत ऐठिए कि वो टूट ही जाए।
जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा।
जी एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ। जी नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो
हेलो
जी नाम बताएं।
मैं जम्मू कश्मीर से सर मोहम्मद शफीक यादव बोल रहा हूँ। सर
जी मोहम्मद शफीक साहब।
हाँ जी
जी अपनी बात रखिए।
सर सबसे पहले बात यह है कि हमारे मुल्क की जो ताकत और शक्ति बढ़ते हुए जो है ये दूसरे देश चाइना वगैरह वगैरह ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, लेकिन हमें चाहिए कि संयम बरतना चाहिए और हमें अमन अमन की बात करनी चाहिए। और कोई भी बात जो है जंग से नहीं हल होती, अमन से हल होती है और शांति से हल होती है, बैठ के बात करना चाहिए। जब हमारा मुल्क किसी जंग में झोंका गया तो हम दुनिया जो है ये हमारे जम्मू तमाम जो हिंदुस्तान है ये जो कमजोर पड़ जाए, इसलिए अमन और शांति से कोई बात को जो हल करना चाहिए सर।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर से अमन और शांति की बात आ रही है और संयम बरतना चाहिए। इन्होंने जो बातें कहीं, अमन में ही बहाली होगी और शांति अगर है तो। यहाँ पर ये एक जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि इस दरमियान भारत और चीन के जब हम संबंधों की बात करते हैं, इस दरमियान एक मामला बहुत उलझा कि 1962 वाला भारत नहीं है, उसने दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि 1962 वाला चीन भी नहीं है। तो ये 1962 का जो जिक्र आया, क्या इसकी वजह से दोनों देशों के बीच और तनातनी मतलब और बढ़ गई?
पहले तो इन श्रोताओं की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा, अपने तजुर्बे से देखिए कश्मीर से शांति और संयम की जब आवाज़ आती है तो मुझे अच्छा लगता है। और ये बात नज़र भी आ रही है भारत की विदेश नीति में, जो अभी द्वंद्व छिड़ा हुआ है भारत और चीन में, भारत की
मतलब अरुण जेटली साहब ने कुछ कहा तो उसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आया कि हमें भी कम ना समझें, और फिर दोनों की तुलना शुरू हो गई।
फिर उसमें यही मैं दोबारा से कहूँगा कि बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आती हैं जो लगता है कि थोड़ी अलग हैं, पर पूरी ओवरऑल पिक्चर आप देखें कि हमारे विदेश मंत्रालय का क्या रुझान रहा है इसमें, तो भारत के विदेश मंत्रालय ने बार बार संयम की और डायलॉग की बात की है। हाँ, एक आध उसमें स्टेटमेंट, जैसे हमारे आर्मी चीफ की एक स्टेटमेंट थी या अरुण जेटली की एक स्टेटमेंट थी, वो थोड़ी अलग हैं और उससे जो है चीन ने पूरा मौका उठाया उसका जवाब देने में। पर मुझे लगता है कि पूरी जो बड़ी तस्वीर भारत की है वो संयम की है, वो बातचीत से हल निकालने की है, और कश्मीर से यदि ऐसी आवाज़ आती है तो मुझे लगता है कि वो एक तरह से एंडोर्स करती है कि भारत की नीति जो है इस वक्त ठीक तरफ चल रही है।
दोनों देशों के बीच में इस समय चल क्या रहा होगा, अगर मैं अज्यूम करने के लिए बोलूं, मतलब इस मामले को हल इसका निकालने के लिए?
दोनों देश तो देखें बहुत बड़े हैं, समाज हैं, और हम ये कह सकते हैं कि दोनों नेताओं में क्या चल रहा होगा, क्योंकि दिशा निर्देश तो नेताओं से ही मिलेगा अक्सर।
आज ही चीन के विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है कि भारत में जो चीनी लोग हैं, चीनी नागरिक हैं, वो थोड़ा सा सुरक्षा सतर्क रहें।
इसके बारे में बहुत जल्द से दो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा कि कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या कहा है उधर से, और कभी कभी दोनों तरफ से ओवर रिएक्शन हो जाता है। अभी उन्होंने जो कहा एक तरह से चेतावनी उन्होंने दी है, जिसको अंग्रेज़ी में ट्रैवल एडवाइजरी कहते हैं, उसका लीगल बड़ा अलग मीनिंग है। उसका मीनिंग होता है कि किसी जगह से, ख़ास जगह से हमारे नागरिकों को खतरा है, वो चाहे इतने सिविल अनरेस्ट की वजह से हो या आतंकवाद से हो या किसी लड़ाई युद्ध की वजह से हो। जैसे हाल ही में पाकिस्तान में आप देखें, मई में दो चीनियों को अगवा करके मार दिया गया था, तो वहाँ के लिए ट्रैवल एडवाइजरी चीन ने इशू किया था कि क्वेटा में हमारे चीनी जो है वो ना जाएं। ये इस तरह की ट्रैवल एडवाइजरी नहीं है ना,
अमेरिका,
तो
अमेरिका दुनिया भर के देशों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करता है, ना कोई यूरोपीय देश एडवाइजरी जारी करते
हैं, और इसमें कारण कोई नहीं दिया गया कि इस तरह की क्यों ट्रैवल अलर्ट एक तरह से इशू कर जा रहा है, उसका वजह क्या है। उसको समय सीमा भी दी गई कि 7 अगस्त तक वो जारी रहेगा, उसके बाद नहीं। तो ये बहुत अलग तरह का एडवाइजरी है, इसको हमें शायद ओवर रिएक्ट नहीं करना होगा।
बिल्कुल। दो श्रोता हैं टेलीफोन लाइन पर बैक टू बैक, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
जी सर, मैं हमीरपुर जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से राज से टोला राउत ग्राम से बोल रहा हूँ सर।
जी नाम क्या बताया आपने?
रामकृपाल पाठक।
रामकृपाल जी, अपनी बात रखें।
जी सर, पहले तो मैं पूरी डीडीसी पार्टी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं ऐसे सब प्रसारण के लिए।
जी,
और दूसरी बात मेरी ये है कि हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 46 देशों से पूर्ण रूप से जो है संपर्क में है, और जो इजराइल से जब से दोस्ती हुई तब से चीन के हौसला बुलंद हो चुकी है। क्यों? अच्छा। वो डर रहा है, पहले तो दुश्मन को परास्त करने के लिए उसकी आर्थिक नीति को जो है बिल्कुल समाप्त करना चाहिए, जो चाइना का सामान आता है उसको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात, 1962 नहीं है, और 62 की लड़ाई में चीन के जब से हौसला बुलंद हुए हैं तो आज के भारत के युग में बहुत बड़ी जो है सैन्य शक्ति है और सब कुछ है उसके साथ में, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। परंतु जहाँ तक मेरा विचार है कि जहाँ तक अगर शांति से उपाय निपटा जाए, चाहे कश्मीर हो या चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, जो शांति से अगर
समस्या समाधान होती है तो लड़ने की मेरी समझ से कोई जरूरत नहीं पड़ी।
बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी, आपके साथ ही एक दूसरे फोन कॉल पर एक हमारे दूसरे श्रोता मौजूद हैं। नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं?
जी मेरा नाम पंकज कुमार यादव है।
जी पंकज जी कहां से बोल रहे हैं आप?
जी मैं गिरिडीह झारखंड से बोल रहा हूँ।
गिरिडीह झारखंड से बताए
जी। आज जो मेरा ये सवाल है कि चीन और भारत ये दुनिया की दो बड़ी ताकतें और दोनों की आर्थिक और सैनिक शक्ति काफी विस्तृत है, लेकिन चीन का जो रवैया शुरू से रहा है वो अपने पड़ोसी देशों के प्रति उनका जो ये रवैया है कि आक्रमण की नीति, वो किसी के संप्रभुता का आदर नहीं करते, चाहे आप वियतनाम ले लीजिए, कौन ले लीजिए, चाहे भारत ले लीजिए, और फिलहाल में हम देख रहे हैं भूटान के प्रति। तो अगर भारत और चीन में सैनिक द्वंद्व की बात आती है, अगर युद्ध की नौबत आती है, तो भारत की सैनिक क्षमता क्या वाकई में ऐसी है जो चीन का मुकाबला कर सके?
जी जी, गिरिडीह से हमारे श्रोता लाइन पर थे, बहुत बहुत शुक्रिया। रामकृपाल जी ने कहा कि भाई समझो अगर शांति से बात निपट जाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी और कुछ नहीं हो सकती। गिरिडीह से जो थे, क्या हमारी सैनिक क्षमता वाकई इतनी है कि भाई चीन का सामना आप कर पाएंगे? और जो चीन की साम्राज्यवादी नीति है उसका भी जिक्र कर रहे थे।
पहले तो साम्राज्यवाद की नीति पर हम बात करना चाहेंगे, वो ये कि देखें भारत की जो वृद्धि दर है वो अब चीन से ज़्यादा है। जो दुनिया भर से निवेश होता है वो पहले चीन में ज़्यादा होता था, वो भी अब भारत में होना शुरू हुआ। सबसे ज़्यादा अब भारत में निवेश हो रहा है विश्व भर से, और प्रधानमंत्री की यात्राओं से जो है वो विजिबिलिटी बहुत बढ़ गई है भारत की। तो चाहे वो आतंकवाद का मामला हो या दूसरे मामले हो, भारत बहुत से देशों को अपने साथ जोड़ता जा रहा है। जाहिर है कि चीन पर इसका असर है, ये कारण हो सकता है। और उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक बहुत ही सपना है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको अपनी लेगेसी बनाना चाहते हैं, और भारत उसमें शामिल नहीं हुआ और ना भूटान शामिल हुआ। और भूटान 24 बार उनसे बॉर्डर पर बात कर चुका है, कोई सुलझाया नहीं जा रहा उनसे, तो उनको लगता है कि भूटान को भारत से अलग किया जाए। ये उनकी इस वक्त सोच है कि यदि भारत जो उनका सबसे बड़ा और प्रभावशाली पड़ोसी देश है, यदि उसको वो दबा सकता है तो बाकी सारी पड़ोसी देशों को चीन के जो है एक संदेश चला जाएगा। तो इसलिए भारत को बहुत ही संयम से अपना प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा पूरे पड़ोसी देशों के बीच में। इस वक्त मुझे लगता नहीं कि युद्ध का फ़ायदा चीन को होगा ना ही भारत को होगा। इस वक्त दोनों की जो है आर्थिक व्यवस्थाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, ये मौका नहीं है झगड़ा करने का, और दोनों देश इस बात को समझते हैं, तो युद्ध के कोई हालात मुझे लगता होंगे ही नहीं। होंगे तो जाहिर है कि भारत के पास अपनी काबिलियत है, और युद्ध में आज जो है कि वो केवल भूमि पर निर्णय नहीं होता है, पूरे विश्व का
तो
क्या
जल थल हर मार्ग पर
तो भारत की जो है वो सब तरह से विश्व पटस्थल पर जो छवि इस वक्त है वो बहुत अच्छी है। तो पर मैं ये कहूँगा कि युद्ध के मुझे लगता नहीं कि कोई आयाम बन रहे हैं, और कई दूसरे तरह से भी देश एक दूसरे को दबाते हैं और कोशिश करते हैं, और चीन ऐसी कोशिश कर रहा है।
एक पेच इसमें यह है, एक पेच बहुत संक्षेप में, समय नहीं है मेरे पास, कि अमेरिका के करीब भारत जाता दिखाई दे रहा है, क्या इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये दिखता है चीन में? इस तरह का मैसेज जाता है कि भाई ये इसके साथ तो पाकिस्तान हमारे साथ, इस तरह का इक्वेशन?
जब भी यूनाइटेड स्टेट्स जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वो जो उसका झुकाव जिस तरफ होता है तो चीन और भारत में दूसरे को लगता है कि शायद हम अब किसी तरह से मुश्किल में आने वाले हैं। तो भारत के करीब 15 साल से अमेरिका से इतने सुदृढ़ संबंध बन रहे हैं, तो चीन को लगता है कि उनका घेराव हो सकता है भविष्य में, और कम से कम अमेरिका की ऐसी सोच है भी। तो इस तरह से कई कारण हैं कि चीन को हमसे परेशानी हो सकती है, और दोनों नेता आप देखें कि बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं इस वक्त, दोनों तरफ से राष्ट्रीयता उनमें भरी हुई है, और
किसका सिक्का चले ये हाँ, इस बात की लड़ाई है।
तो इस तरह से उनके अंदरूनी कंपल्शंस भी हैं कि कौन पहले अकोमोडेट करेगा। पर भारत का जो रवैया इस वक्त है, शुरू से ही हमने कोई लड़ाई युद्ध की कोई दबाव की बात नहीं की, हम बातचीत की बात कर रहे हैं, हम भूटान की संप्रभुता की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो पोस्चर अभी तक है वो विश्व में शायद ज़्यादा कन्विंसिंग है, बजाय कि आप ब्रो बीटिंग और चीन ने जिस तरह से प्री कंडीशंस की बात की कि तभी बात करेंगे पहले भारत के सैनिक की, तो ये तो कूटनीति में अच्छी बात है ही नहीं, क्योंकि आप माने कि यदि संप्रभुता पर अटैक होता है तो वो चीन के सैनिक पहले अंदर आए हैं। तो किसी को पहले हटना चाहिए।
लेकिन पैरेलल जिसको कहते हैं कि समानांतर तरीके से जो कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है,
बहुत अच्छे से बातचीत चल रही है, और G20 की मीटिंग में जो बॉडी लैंग्वेज नजर आया उससे मुझे लगता है कि एक इंडिकेशन मिला है कि जो इसका पीक पीरियड था वो खत्म हो गया है, और अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे, बहुत धीरे, क्योंकि डोमेस्टिक कंपल्शन है, इसलिए बहुत ही धीरे इसको सुलझाया जाएगा।
प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया, समाचारों का वक्त नहीं है। अपने तमाम श्रोताओं का शुक्रिया जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उनसे माफी जिसे हम शामिल नहीं कर पाए। मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों यानी कि शाकिर आलम के साथ विदा दें। सुबह मुलाकात होगी नमस्कार भारत कार्यक्रम में, तब तक bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। नमस्कार,
धन्यवाद।